ये तो यहूदियों का हाल हुआ, मगर अफसोस के ईसाइयों ने थोड़े ही दिनों में इससे बदतर अपना हाल बना लिया और मस्कूरा वाला सदाकतों में से किसी सदाकत पर कायम न रहे, और जो खुदा की सिफात कामिला थी वो सब इब्ने मरियम पर थाप दी। और उनके मजहब का खुलासा ये है कि खुदा ताला जमीए माफिल आलम का रब नहीं है, बल्कि मसीह उसकी रबूबियत से बाहर है, बल्कि मसीह आप ही रब है। और जो कुछ आलम में पैदा हुआ वो बजों में बातिल उनके बतौर कायदा कुलिया मखलूक और हादिस नहीं, बल्कि इब्ने मरियम आलम के अंदर हदूस पाकर और सरी मखलूक होकर फिर गैर मखलूक और खुदा के बराबर बल्कि आप ही खुदा है। और उसकी अजीब ज़ात में एक ऐसा आजूबा है कि बावजूद हादिस होने के कदीम है, और बावजूद इसके कि खुद अपने इकरार से एक वाजिबुल वजूद के मातहत और उसका महकूम है, मगर फिर भी आप ही वाजिबुल वजूद और आज़ाद मुतलक और किसी का मातहत नहीं। और बावजूद इसके कि खुद अपने इकरार से आजिज़ और नातवा है, मगर फिर भी ईसाइयों के बेबुनियाद जोम में कादर मुतलक है और आजिज नहीं। और बावजूद इसके कि खुद अपने इकरार से अमूर गैबिया के बारे में नादान महज है, यहां तक कि क्यामत की भी खबर नहीं कि कब आएगी, मगर फिर भी नसरानियों के खुश अकीदा के रूह से आलिमुल गैब है। और बावजूद इसके कि खुद अपने इकरार से और नीज सुहफ अंबिया की गवाही से एक मस्कीन बंदा है, मगर फिर भी हजरात मसीहियों की नजर में खुदा है। और बावजूद इसके कि खुद अपने इकरार से नेक और बेगुनाह नहीं है, मगर फिर भी ईसाइयों के ख्याल में नेक और बेगुनाह है। बरस ईसाई कौम भी एक अजीब कौम है, जिन्होंने जिद्दैन को जमा कर दिखाया और तनाकुस को जायज समझ लिया, और गो उनके एतिकाद के कायम होने से मसीह का दरोग गो होना लाजिम आया, मगर उन्होंने अपने एतिकाद को ना छोड़ा। एक जलील और आजिज बंदे को रब्बुल आलमीन करार दिया, और रब्बुल आलमीन पर हर तरह की जिल्लत और मौत और दर्द और दुख और तजस्सुम और हलूल और तगैयुर और तबद्दुल और हदूस और तवल्लुद को रवा रखा है। नादानों ने खुदा को भी एक खेल बना लिया है, ईसाइयों पर क्या हसर है। उनसे पहले कई आजिज बंदे खुदा करार दिए गए हैं, कोई कहता है रामचंद्र खुदा है, कोई कहता है नहीं कृष्ण की खुदाई उससे कवितर है। इसी तरह कोई बुद्ध को, कोई किसी को, कोई किसी को खुदा ठहराता है। ऐसा ही आखिरी जमाने के इन सादा लोहों ने भी पहले मुशरिकों की रीस करके इब्ने मरियम को भी खुदा और खुदा का फर्जन ठहरा लिया। वरस ईसाई लोग ना खुदावंद हकीकी को रब्बुल आलमीन समझते हैं, ना उसे रहमान और रहीम ख्याल करते हैं, और ना जजा सजा उसके हाथ में यकीन रखते हैं, बल्कि उनके गुमान में हकीकी खुदा के वजूद से जमीन और आसमान खाली पड़ा हुआ है, और जो कुछ है इब्ने मरियम ही है। अगर रब है तो वही है, अगर रहमान है तो वही है, अगर रहीम है तो वही है, अगर मालिक यौमिद्दीन है तो वही है। ऐसा ही आम हिंदू और आर्या भी इन सदाकतों से मुनहरिफ हैं, क्योंकि उनमें से जो आर्या हैं वो तो खुदाए ताला को खालिक ही नहीं समझते और अपनी रूहों का रब उसको करार नहीं देते, और जो उनमें से बुत परस्त हैं वो सिफत रबूबियत को इस रब्बुल आलमीन से खास नहीं समझते, और 33 करोड़ देवता रबूबियत के कारोबार में खुदाए ताला का शरीक ठहराते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं, और ये हर दो फरीक खुदाए ताला की रहमानियत के भी इनकारी हैं, और अपने वेद के रूह से ये एतिकाद रखते हैं कि रहमानियत की सिफत हरगिज खुदाए ताला में नहीं पाई जाती, और जो कुछ दुनिया के लिए खुदा ने बनाया है ये खुद दुनिया के नेक अमलों की वजह से खुदा को बनाना पड़ा, वरना परमेश्वर खुद अपने इरादे से किसी से नेकी नहीं कर सकता और ना कभी की। इसी तरह खुदाए ताला को कामिल तौर पर रहीम भी नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों का एतिकाद है कि कोई गुनहगार खाक कैसा ही सच्चे दिल से तौबा करे, और खाह वो साल हा साल तजर्रो और जारी और अमाले सालेहा में मशगूल रहे, खुदा उसके गुनाहों को जो उससे सादिर हो चुके हैं हरगिज नहीं बख्शेगा, जब तक वो कई लाख जूनों को भुगत कर अपनी सजा न पा ले। جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا پھر نہ وہاں توبہ کام آوے نہ بندگی نہ خوف الہی نہ عشق الہی نہ اور کوئی عمل صالح گویا وہ جیتے جی ہی مر گیا اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت سے بکلی نا امید ہو گیا۔ الحاظ القیاس یہ لوگ یوم الجزا پر جس کے روح سے خدا تعالیٰ مالک یوم الدین کہلاتا ہے صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے اور جن طریقوں متذکرہ بالا کے روح سے انسان اپنی سعادت عظمیٰ تک پہنچتا ہے یا شکاوت عظمیٰ میں پڑتا ہے اس کامل سعادت اور شکاوت کے ظہور سے انکاری ہیں اور نجات اخروی کو صرف ایک خیالی اور وہمی طور پر سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ نجات ابدی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور ان کا مقولہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نہ اس جگہ آرام ہے اور نہ اس جگہ، اور نیز ان کے زوم باطل میں دنیا بھی آخرت کی طرح ایک کامل دار الجزا ہے جس کو دنیا میں بہت سی دولت دی گئی وہ اس کے نیک عملوں کے عوض میں کہ جو کسی پہلے جنم میں اس نے کیے ہوں گے دی گئی ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ اسی دنیا میں اپنے نفس امارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اس دولت کو خرچ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خدا تعالیٰ کا کسی کو اس غرض سے دولت دینا کہ وہ اس دولت کو فی الحقیقت اپنے اعمال کی جزا سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کے لیے اعلیٰ بناوے، یہ ایک ایسا ناجائز فعل ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجے کی بے ادبی ہے، کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندوؤں کا پرمیشور آپ ہی لوگوں کو بدفعلی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے، اور قبل اس کے جو ان کا نفس پاک ہو نفسانی لذات کے وسیع دروازے ان پر کھولتا ہے اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا اجر ان کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے اسباب تناؤم پا کر اور نفس امارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحت السرا میں جا پڑیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور حکومت ہے یہ میرے ہی اعمال سابقہ کا بدلہ ہے، وہ کیا کچھ نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا؟ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار الابتلاء ہے، اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلاء اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا جاوے کہ میں کس طور پر اس میں تصرف کرتا ہوں، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو، تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مصارف میں خرچ کرے، اور نیز وہ غایت درجے کا شکر بھی کرتا، کیونکہ وہی شخص دلی اخلاص اور محبت سے شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے مفت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے۔ غرض آریہ لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ نہ رب العالمین ہے، نہ رحمان، نہ رحیم، اور نہ ابدی اور دائمی اور کامل جزا دینے پر قادر ہے۔